सबसे बड़ा अनर्थ कौन है? देहात्म ज्ञान सबसे बड़ा, इससे बढ़कर के और कोई देह में मैं का ज्ञान ये सबसे बड़ा है। और अनर्थ दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब ये दूर होगा तो एक बार एक दूर नहीं होता है, क्रमशः देहात्म ज्ञान दूर होता जाएगा। ये देहात्म ज्ञान जितना दूर होगा, माइक वस्तुओं में मैं मेरे का भाव भी उतना ही, और साथ साथ में काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य इत्यादि जितना भी आसक्ति है और ये अनर्थ है, ये सब भी धीरे 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 आसक्ति पहुँचने पर प्राय अनर्थों अनर्थ दूर हो जाए। देहात में अभिमान भी अब नहीं रहा, मैं और मेरा जो प्राकृतिक वस्तुओं में वो भी बहुत कम हो जाता है, क्षीण हो जाता है। जब अत्यंत क्षीण हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा गंध रहेगा, तब इसका मतलब ये भाव आने की स्थिति हो, उसी स्थिति में भाव हो, इसके पहले वो भाव नहीं आता। जिस समय भाव उपस्थित होता है, भाव माने संहित संगीत और संधिनी भाव, संगीत और प्रादी का भाव, जब हृदय के संधिनी के ऊपर प्रकाशित होता है। संधिनी माने वहाँ पर
सत्ता,
सत्ता माने हृदय, जब वो प्रकाशित होगा था, तीन चीजें एक साथ में मिलेंगी, संगीत संधि संधि संगीत और प्रकाश। उस समय में प्रेम का आभास वहां उदित होता है, प्रेम का आभास ही यह भाव है। प्रेम सूर्य है और उसकी प्राथमिक जो किरणें हैं उसको आभास, किरणें जैसे कि सूर्य पूर्व दिशा में अभी उदित नहीं हुए हैं, होने वाले हैं, इसको कहते हैं आभास। अंधकार दूर हो गया क्योंकि सूर्य की किरणें प्रकाशित हुई हैं, उसी प्रकार से प्रेम कभी प्रकाशित नहीं हुआ है, अब प्रकाशित होने वाला ही है, उस स्थिति को यह भाव ब्रज के जो रागात्मिक जन है उनके हृदय में सतत विराजमान करता है सब समय। जब कोई भक्त उन लोगों के भावों का स्मरण करके भजन साधन करता है, नित्य निरंतर वैसे ही कथा इत्यादि सुनता है, उनके भक्तों का संग करता है, तो उनके हृदय में जो भावना रागात्मिक जनों से उनके हृदय में आई, किसमें जो रागानुगी हैं वो भी सिद्ध जैसे ही उनके भाव में, उनके हृदय से ये भाव के ऐसे में हो भगवान की कृपा करने पर वैसे ही दे,
भक्त के माध्यम
से ही दे। इसी को कहते हैं भगवान की कृपा के माध्यम से, भक्तों की कृपा के माध्यम से भगवान की कृपा आई है। रागात्मिक जनों में ही विशुद्ध प्रेम होता है, उन्हीं का कुछ भाग जब यहाँ पर रागानुग का भजन करने वालों के हृदय में जब उदित होता है तो उसको कहते हैं भाव अथवा विशुद्ध सत्व। उसका नाम देखो एक शब्द की समझना, ये जो भाव है जीव के हृदय में है या भगवत कृपा से रागात्मिक जनों के हृदय से यहाँ आता है तब होता है। जैसे सीप में मोती होती है, पहले तो सीप रहती है, स्वाति का नक्षत्र का पानी पड़ते ही उसमें मुक्ता बन जाता है। ये मुक्ता की पोटेंसी जो है उस पानी में है या सीप के अंदर है?
सीप के अंदर है, उससे समझो उसे
सीप नहीं है, पानी में नहीं है, पानी में नहीं है स्वाति नक्षत्र, पानी में ये सिपक है, ये गुण है, उस चीज को प्रकाशित करता है। ज्योति स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, जीव के स्वरूप में ही नित्य दासत्व है, और ये नित्य दासत्व भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं शिक्षा तक ये व्याख्या नहीं, गोपी देव भाव का
गोपी देह भी प्रकट है,
देह का वो जितने भाव हैं सब जीवों के स्वरूप में किसी न किसी रूप में होगा, किंतु ऐसे अव्यक्त रूप में है जैसे बीज में कोई बड़ा पेड़, उसके पत्ते फूल फल सब, किंतु ये पेड़ भी ये बीज से होता है पानी से नहीं। पानी पड़ने पर जितने प्रकार के बीज हैं उनमें से अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं, यदि पानी में वो सत्ता होती तो पानी एक ही जैसा भाव सब बीजों से एक ही चीज पैदा करता, इसलिए पानी में उस प्रकाशित करने की शक्ति है और उस बीज में जो चीज होता है उसकी सब पोटेंसी शुद्ध होती है। इसलिए जीव हृदय में भी नित्य सिद्ध शरीर की का सूत्र है, उसी में पोटेंसी उसी में है, और पानी के द्वारा तत्व श्रवण कीर्तन के जल के द्वारा भक्तों के अनुसरण करने से वो चीज अपने आप
गुरु कृष्ण प्रसाद,
किंतु बिना पानी के संयोग से न तो बीज अंकुरित होगा, न पेड़ होंगे, न फल होगा, न पत्ता होगा, न पुष्प होगा। ठीक वैसे ही ऐसे भक्तों के से श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि के द्वारा वो पानी के द्वारा जीव का हृदय और वहाँ से वो चीज आती, वो चीज भी आनी चाहिए और जीव के हृदय में वो है सो भाई, तब दोनों मिल करके ये भाव और एक के बिना दूसरा नहीं होगा। तो कहते हैं कि ये बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, पहले के क्लेश अग्नि ये भाव तक उत्तम भक्ति का साधन जब हम करेंगे, उत्तम भक्ति होनी चाहिए और उसका साधन जब हम इंद्रियों के द्वारा शारीरिक इंद्रियों के द्वारा जब करेंगे तो उसका साधन बहुत दूर से हो रहा है, इसलिए पहली स्थिति में क्लेश अग्नि होगा, और इसके बाद में जितने रूप में क्लेश अग्नि होगा होगी, साथ ही साथ में उतने ही रूप में शुभदा भी होगी, शुभ को देने वाला क्लेश दूर होता जाएगा, शुभ अपने आप आ जाएगा। उतने ही रूप में वो दूसरा क्या है पत्ते दो,
मोक्ष लघुता की दुर्लभा,
दुर्लभा मोक्ष लघुता की, मोक्ष लघुता के तक मोक्ष को वो उतना ही रूप में पहले वह साधारण अवस्था से ही वो लघु समझने लग जाए और बहुत ही दुर्लभा होगी। ये चार पत्ते जब कि ये पूर्ण हो जाएंगे तो फिर वो संद्रानंद होगी, अपने भी आनंद का अनुभव करेगा वो साधन और साथ साथ उसकी भक्ति कृष्ण को भी परिकरों को भी आकर्षित होगा। बहुत ही दुर्लभ है साधन सहस्त्रोय, सहस्त्र साधन करने पर भी ये सुख दुर्लभ है। तब कैसे होगी, भक्तों के कृपा से उसकी दीनता के ऊपर में जब समझेगा कि मैं बहुत दीनहीन हूँ, आत्मा भी पवित्र होगी अपने आप। हम लोग कितना भी साधन करते हैं तो वर्षा होती है, कैसे वर्षा होती है, यहाँ पर वर्षा की जरूरत है, वर्षा अपने आप, हम तरह तरह से साधन करते हैं, वर्षा होगी, वर्षा कब होगी, वो अपने आप कृपा करके अनुकूल परिस्थिति बना लेगी प्रकृति, भगवत इच्छा से कहो जैसे, और परिस्थिति बना करके ठीक समय पर वो वर्षा, अनुकूल परिस्थिति जब तक नहीं बनेगी वो वर्षा नहीं। हजार कोई चेष्टा करे मेघ बना दे तो होगा, पहले के लोग मंत्र के द्वारा ऐसा करते हो जाता, मंत्र माने भगवत कृपा की। तो ऐसे ही साधन सहस्त्र करने पर भी हरिभक्ति सुदुर्लभ है, हरिभक्ति सुदुर्लभ है, किंतु साधन नहीं करने से हृदय निर्बल भी नहीं होगा, हम उसके पात्र भी बनेंगे नहीं और वो होगा नहीं, इसलिए दोनों की जरूरत। सिद्धि का दो लक्षण है, स्वरूप लक्षण और तटस्थ। जब इसकी सिद्धि भाव माने उत्पन्न हो गया हृदय में तो दो उसके लक्षण, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण ही हम देख सकते हैं, स्वरूप लक्षण हम लोग नहीं देख सकते, वो अनुभव बन में है। हृदय कैसे द्रवित हो रहा है भाव आने के बाद, ये तो देखने की चीज है। तब हृदय द्रवित हो रहा है इसका कुछ बाहरी लक्षण हो सकता है कि नहीं भी हो, फिर भी ऐसा दिखता है, पर्वत पर आग नहीं भी हो तो भी धुआं देखा जा सकता है, आग बुझ गई हो उसका धुआं ऊपर उठ रहा है, या कुहासा हो रहा है मालूम पड़ता है कि धुएं जैसा है, वहां पर आग नहीं भी हो सकती है, किंतु अधिकांश रूप में ऐसा ही देखा जाता है, जहाँ आग है तहां पर धुआं दिखता है। ऐसे ही तटस्थ लक्षण उसका क्या है, यही हम लोग समझ सकते हैं, किसी भी व्यक्ति
तो सिद्ध हो जाता है, जत्र जत्र धूम तत्र तत्र वन्य, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ आग है, किंतु पानी के ऊपर जो कुआसा है उसको देख करके यदि कोई आग का अनुमान करें ये तो अन्याय असिद्ध हो गया।
तो इसलिए तटस्थ लक्षण को कहते हैं कि ये सब जगह प्रयोज्य नहीं है, तटस्थ लक्षण उसी को कहते हैं। स्वरूप लक्षण कहते हैं जैसे उस वस्तु से वो लक्षण अलग न, और तटस्थ कहते हैं कि उससे अलग रह करके उसकी उसका परिचय प्रदान करता है, वो किसी हालत में वो झूठा नहीं, किंतु स्वरूप लक्षण है अनुभव व्यक्ति और वह है अनुभव व्यक्ति। अब उसके लिए बतला रहे हैं कि उसका बाह्य लक्षण क्या है। हम किसी को कहते हैं ये बड़े खाली पक्ष हैं, कैसे कहते हैं, उनका हृदय देखा ना कुछ ऊपर में देखते हैं कि बड़े सुंदर में तत्व बतला है, और ये उनका बतलाना हुआ तथ्य जो तत्व बतला है, ये शास्त्रों में वेदों में पुरुषों में भागवत में चैतन्य चैतन्य इत्यादि में ये ठीक ऐसा ही ये प्राय ठीक और उसकी व्याख्या भी बहुत विशद हो रही है और कभी कभी वर्णन करते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी कभी लघवी हो जाता है। इसको देख करके हम लोग कहते हैं कि ये उच्च कोटि के भाव, मैं तो कैसे हम स्थित करें। इसलिए तो ये सत्य नहीं भी हो सकता है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि सहज या लोगों का ऐसा आदमी ने या यात्रा दल में बनने वाले नार उनका भाव सत्य नहीं हो सकता है, कोई जरूरी नहीं बल्कि नहीं। इसलिए कहते हैं यहाँ पर इसके अतिरिक्त हम लोगों को कुछ जानने का उपाय नहीं। ये महाप्रभु जी जिस समय में जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी को देख करके और भावाविष्ट होकर के गिर पड़े और उस समय अष्टसात्विक भाव सुदीप्त रूप में जो प्रकट हुआ तो उन्होंने देखा ये उनका सुदीप्त भाव ये क्या था, तटस्थ लक्षण से वो विचार कर और उनको संदेह हुआ जैसे ये सचमुच में ये साधारण साधक तो नहीं है, साधक है जरूर किंतु साधारण, किंतु ये नहीं स्थिर कर सके कि किसी भी साधक जीव में या सिद्ध जीव में ये भाव पैदा नहीं हो सकता। ये भाव केवल मात्र श्रीमती जी में ही हो सकते हैं और किसी में नहीं हो सकता। उनके अंदर में क्यों हो रहा है ये समझ रहे हैं, उनके हृदय के भीतर में क्या क्या चीज की उद्दीपना हो रही है, कैसे भाव तरंग उठ रहे हैं, किंतु जब रोमांच हो रहे हैं, पुलक हो रहा है, अश्रुपात हो रहा है, विवश हो जाते हैं, तब उसको देखकर पता है ये कोई अलौकिक भाव इसके तो नैनम कलदाश धारया बदनम गदगद रूप धया दिया पुलक अग्नि की तनुभव पदार्थों का नाम ग्रहण ये भविष्य। चैतन्य महाप्रभु जी शिक्षास्तक के आज से श्लोक बने और इसमें संबंध अभिभेद और प्रयोग ये सभी कुछ इसमें प्रतीत है। यहाँ तक कि इसमें जो दस मूल है वो दस मूल भी पूरे इसके अंदर में प्रतीत है। भागवत का कितना भाव है और उज्ज्वल मणि भक्ति और स्वामी सिंधु उज्ज्वल मणि इत्यादि के भाव इसमें सब प्रतीत है, अंतर भाव्य इसके भक्ति मनोहर ठाकुर जी ने कहा कि बड़े बड़े रसिक लोग महाप्रभु जी के संग में इन सबका रसा साधन करते, उन्होंने और कोई चीज बनाया क्यों नहीं। एक तो किसी स्मार्ट ब्राह्मण के साथ में वो पुस्तक किसी की पट्टिका
अभिनंदन
मतलब न्याय के किसी ग्रंथ का उसको उसमें फेंक दिया और एक और भी कुछ कहा जाता है मुझे याद नहीं महाप्रभु के नाम लोग कहते हैं आरोप करते हैं किंतु वो है कि नहीं ये ठीक है, किंतु इसके लिए निश्चित है कि कुछ चैतन्य चरितामृत ने कहा है और भी सब लोगों ने इसका वर्णन क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा जिसको जगन्नाथ जी की मूर्ति देखने से ही एकदम मन तलमल हो जाता है, गिर जाते हैं। तो वो जब लिखते हैं लिखने बैठे हैं भागवत का एक एक श्लोक भी जब उनके मन में आता है तो वो महाभाव की स्थिति उनके अंदर में तो कलम पकड़े कौन और तटस्थ भाव से लिखे कहा और सुना जाता है या लिखा जाता है तटस्थ होने पर। ऐसे नहीं, सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत लिखा है किंतु बाह्य स्थिति में बाह्य ज्ञान रहने पर तटस्थ की दृष्टि से नहीं तो लिखा नहीं जाएगा। तो यदि कोई जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने अंत दशा में कोई भी चीज को देखा उस समय तो लिख नहीं सकते, कब लिखेंगे? बाह्य दशा जब आएगी संपूर्ण रूप से तब उनकी कलम उठेगी और लिखेंगी। तो ये तो इन लोगों के लिए संभव, किंतु महाप्रभु के लिए संभव होगा कि नहीं? वो जहां लिखना आरंभ किया वो भाव आया बस बस, इसलिए वो कोई ग्रंथ इत्यादि नहीं। उन्होंने प्रेरणा करके अपने भक्तों के द्वारा लिखवाया रूप सनातन स्वरूप दामोदर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी इत्यादि के द्वारा लिखवाया, और ऐसा लिखाया जो विश्व में सबसे श्रेष्ठ रूप की पुस्तक है। भक्ति गोस्वामी सिंधु जैसा ग्रंथ कोई भी भक्ति की पारिभाषिक कोई ग्रंथ आज तक नहीं था, न पहले था न अब तक, उज्जवली मणि जैसा कोई ग्रंथ ही आज तक नहीं लिखा गया, जीव गोस्वामी जैसा सब संदर्भ आज तक कोई सिद्धांत की बात ही नहीं लिखी है, सनातन गोस्वामी की वैष्णवी वैष्णव तोष्णी टीका और बृहद भगवतामृत जैसा कोई ग्रंथ आज तक कोई लिखी नहीं। इस तरह से अपने परिक्रमों के द्वारा जगत में ले सकते, तो वो चैतन्य महापुरुष स्वयं ही ये कार्य नैनम गलत आशु धारया बदनम गदगद उद्धया गिरा पुलकै निजितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्य। ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं कह रहे, कब ऐसी मेरी दशा होगी? जैसे विलाप पुष्पांजलि हमारे रूप गोस्वामी की स्तवावली इत्यादि में विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर जी ने सब चीज ऐसा ही लिखा है, कब मेरी ऐसी दशा हो। अर्थात ये भाव के भाव का तटस्थ लक्षण है, पहला हुआ संबंध से तो दर्पण मारते हैं, दूसरा हुआ नाम को ही उन्होंने श्रेष्ठ स्थापन साधन किया, नाम ही सबसे श्रेष्ठ साधन था। तीसरे में बतलाया ये नाम कैसे किया जाएगा, इस प्रकार से होकर, किंतु तो भी यदि देहात्माभिमान रहा और देहात्माभिमान संबंधी कामनाएं हुई, ये कामनाएं क्यों होती हैं? न धन, धन हमको चाहिए, कब होगा? जब देहात्माभिमान रहेगा। जिसका देहात्माभिमान नहीं है उन लोगों के लिए धन कृष्ण का प्रेम है, और नहीं तो सबको इस जगत में कुछ धन की लालसा जरूर रहेगी। जिसका जितना ही अभिमान कम है देहात्माभिमान, उनको उतना ही धन की आवश्यकता नहीं। अभी हम लोगों को किसी किसी को या सभी लोगों को फील होता है, हम अनुभूति ऐसी होती है, हाय हाय आज धन होता हमारे पास तो मैं 5 अरब खरब का एक मंदिर और सब लोग देखते विश्व में जहां एक मंदिर अपने तरह का है। अच्छा ये क्यों हुआ? भगवान की सेवा के लिए हुआ ना, अपना भी उसमें कुछ लगा हुआ है, कुछ गंध है, भगवान के लिए करेगा? भगवान के लिए मंदिर इतना ऐसा नहीं है, बोलो बड़े वृंदावन में, तो इसमें अपना कुछ है। मैं ऐसा करूंगा जगत को दिखला दूंगा ऐसा मंदिर करूंगा, यदि कहो जैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने भी किया, तो रूप सनातन जी का वाचा नहीं, क्यों? वो स्वयं कृष्ण आकर के जगत कल्याण के लिए इनसे कह रहे हैं तू ऐसा कर, और उन्होंने नहीं किया, किसी से कह दिया कि भाई ऐसी प्रेरणा हो रही है ये सरोवर को बनवा उससे अपने दूर। सनातन गोस्वामी का मंदिर हो गया, रूप गोस्वामी का मंदिर हो गया, सेवा होने लगी, प्रणाम करके कहीं लिखा भी नहीं या हमने बनाया, इसलिए उनके और हमारे धन। हम सोचते हैं कि आज हमारे पास में धन होता सब वैष्णव लोगों को एकत्र करके प्रखरी महोत्सव करता है और खूब कीर्तन होता है, आठ उपहार कीर्तन होता है। क्यों भाई, क्यों ऐसी इच्छा है? इससे जगत का कल्याण है। अच्छा तो ठीक है, तुम इसी स्टेज में। अच्छा यदि ऐसा अष्टप्रहर का कीर्तन और प्राथारी महोत्सव नहीं होगा तो कृष्ण की सेवा हो सकती है कि नहीं हो सकती है? वो सेवा बड़ी होगी कि ये सेवा बड़ी होगी? कोई भाव राज्य में आकर के सब समय डूबा हुआ उनकी सेवा अष्टकाल में कर रहा है और कोई ये जगत को प्रकाश कर रहा है उनकी सेवा। साधारण दृष्टि से लोक मंगलकारी वही है, मंदिर बना करके पूजा करके ये सब, किंतु जब साधना की जब रागानुगा भक्ति की तरफ में देखेंगे ना तो उसे लाख गुना ऊंचाई में मंदिर है। इसलिए कहते हैं जिसमें में वो भाव चैतन्य महाप्रभु लिखने जाएंगे तो बस भावाविष्ट हो जाएंगे और उसमें ऐसे रम जाएंगे कि जितनी जितना स्मरण होता जाएगा उतना ही भावाविष्ट। इसलिए तटस्थ लक्षण को ही उन्होंने बतलाया, स्वरूप लक्षण को यहाँ पर न बतलाया। स्वरूप लक्षण को आप लोग भक्तिराज स्वामी सिंधु और उज्ज्वल लीलमणि से खोजो, वो इसमें नहीं हुआ, किंतु बिना भाव का नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि हमारे अंदर में नहीं है, कब प्रार्थना करेंगे तो ये भाव हमको आए। यदि कोई साधक हो तो ऐसे ही प्रार्थना करें, यदि प्रार्थना वो करेगा मन से तो इसका मतलब है कुछ उसको कुछ लोभ हुआ। जब यदि कोई ऐसा प्रार्थना नयन मंगलदा सुधारया वदन गदगद उद्धया गिरा उलुभैर्निचितं बहुः कदा तव नाम ग्रहणी भवस, आपका नाम ग्रहण करने की संस्था हमको कैसे दे सको अशात्विक भाव किया जाए, इसका मतलब है ये कुछ है इच्छा। आज यदि ये श्लोक ये सब या भावना ही नहीं है तो ऐसी चीज नहीं आएगी। इसलिए महाप्रभु जी यहाँ पर बतला रहे हैं तटस्थ लक्षण ऐसा ऐसी मेरी कब स्थिति होगी जो जो नाम ग्रहण करते समय में वो बतला जैसे देहात्माभिमान दूर हो गया। जब देहात्माभिमान दूर हो गया तो संसारिक न धन न जन न विद्या न धनम न जनम न सुंदरी कविता न वा जगदीश काम कोई चीज की आवश्यकता, ये सब चीजों की धन की अभी आवश्यकता हम लोगों को हो रही है, बिना इसके मठ भी नहीं चलेगा। इतने आदमी खा पी रहे हैं और रह रहे हैं ये भी नहीं होगा। उनको शिक्षा दे रही दिया जा रहा है, हम लोग भी हैं यहाँ, यहाँ पर पंखा चल रहा है ऐसे नहीं चल रहा। पंखा कहाँ से चल रहा है, पैसे से चलता है कि नहीं? पैसे से चलता है। अब तुम लोग यहाँ पर जितने आदमी हैं सोच रहे हैं कि सब पंखा तो बड़ा सुंदर चल रहा है, हवा भी चल रही है, किंतु ये आ कहाँ से रहा है इसकी चिंता नहीं है, ये पैसे से ही ये हॉल घर में बैठ करके आराम से आप लोग सुन रहे हैं। कहाँ से हुआ, पैसा नहीं रहता था ये होता नहीं। इसलिए साधारण साधकों को धनम जनम सुंदरी कविता ये सब की जरूरत है। जब वो भाव अवस्था आएगी तब ये सब चीजें, देहात में अभिमान भी नहीं रहेगा, इन चीजों की जरूरत नहीं। वो पंखा रहे न रहे हॉल रहे न रहे भाव अवस्था में इसकी सबकी जरूरत नहीं, किंतु अभी हम इसकी जरूरत महसूस करते। इसलिए कब ऐसी दशा होगी जब देहात में अभिमान दूर हो जाएगा और जितने प्रकार के अनथ माधुर्य कदम्बिनी और श्री भक्ति विनोद ठाकुर के भजन रहस्य में जो अभी पीछे बतलाया वो सब एकदम खुल जाएगा, उस समय में मैं ऐसा कब होना है। ऐसा नाम करता है उसको सूखा सूखा लगता है और रस नहीं मालूम होता। साधारण साधकों को जो देहात में भी मान वाले हैं उनको जब ऐसा चीज बनेगा ना तो उनको रस आएगा। वो रस कैसा आएगा, प्राकृतिक रस, उसमें कुछ प्रतिष्ठा आएगी, ये किसने बनाया, कमलापति ब्रह्मचारी ने बनाया या कुछ ऐसा अभिमान। और जब ये सब अभिमान जितने हैं सब दूर हो जाएगा तो उसका धन क्या होगा, हरिनाम करते समय यदि स्वाभाविक रूप में एक बूंद आंसू आ गया उसको जीवन में नहीं खुला, वो आएगा शुद्ध जब वो सब अनर्थ दूर हो गए, जीव का स्वरूप उदित हुआ पांचवे श्लोक में, अभिनंदतम जकिं करम पतितं मां विषमे उपमानं भो और तब उसके द्वारा ये नाम होगा। उसके लिए ये कह रहे हैं कि कब मेरी अवस्था होगी, इन अवस्थाओं को पार करके हमारी हमारा जो सिद्ध भाव है सिद्ध रूप है वो उदित होगा और उसके द्वारा उस समय में नयनम गलत आशु होगा। नयन गलत अश्रु धारा नयन से कैसे निकलेगा, महाप्रभु जी कहते हैं गुरु मूर्ख देख परिदाशा वेदांत अधिकार नहीं, तुम्हें कृष्ण नाम सबसे सिद्ध मंत्र बोला बतलाया और कहा जैसे ये श्लोक याद करो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम कलऊ नास्ते व नास्ते व नास्ते, गुरु जी का आदेश मान करके हमने आरंभ किया ये मंत्र करना और कुछ दिनों के बाद में मैंने देखा शून्य भरा पल चौधरी के शून्य धरा तल चौद के देखी परान उदास शून्य था, क्या कृष्ण प्रेम अपने अंदर जान को बहुत प्राण छटपट छटपट करने लगे, कब मर जाऊं, यदि कृष्ण प्रेम नहीं हुआ तो मर जाना ही लगता। यदि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को काम गायत्री के समस्त अक्षरों का ज्ञान नहीं हुआ तो ये रख करके क्या होगा, मर जाए। ये नरोत्तम ठाकुर का किया छे प्राण ये हम लोगों जैसा नहीं हंस रहे हैं, हंस करके कहते हैं क्या प्राण ना राखी बो करुणा ना होले इधर हंस रहे हैं दूसरे की तरफ देख करके और कहते हैं कि प्राण ना राखी बो, हंस करके कहते हैं ये सब नहीं सचमुच में उनका ऐसा। तो उस समय में नयन गलत अश्रु धारया, क्यों जब उसमें चारों तरफ में देख रहे हैं इतने में उनको स्फूर्ति हुई, एक नव किशोर नटवर
गोपवेश
उनको देखते ही एकदम उनके तरफ में चल पड़ा पकड़ने के लिए और जितने उसके निकट जाऊं भक्तिम लोग कर रहे हैं वो पीछे हटता गया बंसी बजाते हुए, तो मैं थोड़ा सा दौड़ना आरम्भ किया तो पीछे और दौड़ना पीछे से चलना आरम्भ कर, जब एकदम झपट करके उसके निकट पहुंचा न जाने कहा कि शून्य में चला गया और मैं वहीं पर भीतर की स्फूर्ति में इतना सुंदर ये सब वर्णन कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद में धीरे 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 होश आने पर अब रो कर सो करके लोट पोट करने लगे भक्ति मत्ता। तो उस समय में नए नंगल दास उठा रहे इसलिए रोके हैं, ऐसे नहीं आएगा पूर्व राग में कुछ कुछ आ सकता है किंतु ऐसा नहीं नयन अंदर अदास सुधार या कितने रूप में नहीं आएगा, दर्शन करने के बाद में फिर तब उसके प्रति आसक्ति ऐसा भाव जैसे नाथ गरीशी पहले का जो भजन था और कृष्ण ने उनको जो दर्शन दिया या नारायण ने और दर्शन देने के बाद में उनकी स्थिति कैसी हो गई उसका वर्णन करते इसी में आएगा भाव अवस्था में संसार में चारों तरफ में घूम रहे हैं भावाविष्ट होकर के, लोक लज्जा एकदम छोड़ दिया, लाला मुख से गिर रहा है, लार गिर रहा है, टपक रहा है, आंखों में आंसू है, और लोग क्या कहेंगे, इसका सब भाव दूर हो गया। विमत्सर हो करके कौन निंदा करता है, कौन स्तुति करता है, कौन क्या करता है, कोई भी मतलब नहीं, सीधे वे चलते चले जा रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं लगता। ऐसी स्थिति में थोड़ी देर के बाद में काल आया, काल के मुंह सिर पर पैर रख करके नित्य शरीर को पा करके, नित्य सिद्ध शरीर को पा करके चले गए लोग वृंदावन धाम। तो वह कह रहे हैं इसलिए आंखों में आंसू, एक पूर्व राज में हा है कृष्ण का भी भजन नहीं हुआ मुझसे एक प्रकार, और भगवान की एक झलक देखने के बाद में जो आंसू आएंगे वो प्रबलतर आएगा, वो दूसरे रूप में आएगा। भगवान कभी कभी कृपा करके ऐसा दर्शन दे देते, तब उनको याद करते करके वो पछाड़ खा करके और होता है और ऐसा है। गदगद रूप भय आ गया, बदनम माने मुखम, मुख से गदगद रूप भय आ गया, गला रुद्ध होकर के शब्दों का स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पाता। महाप्रभु कहते हैं ज ज जगन्नाथ नहीं निकल, ऐसे भक्तों का पुलक नीचितान बपोह करा, पुलक से भर जाएगा, जैसे सेमल के कांटे होते हैं, सेमल वृक्ष में सरवर, ऐसे रोए खड़े थे। हम लोग का कभी कभी ठंड काल में जब स्नान कभी नदी में करने जाते हैं तो थोड़ा सा पानी में गए तो थोड़ा सा ठंड, थोड़ी सी ठंड लगती है, रोए सब उठ जाते हैं। उससे भी अभी इस भगवत प्रेम रूपी ठंडे पानी में यदि थोड़ा सा लग जाएगा तो ऐसा
एक बार सूर्य की गंगा में एक डुब देने के बाद दूसरा डुब देने का हिम्मत
बापू होता था। तो हम नाम ग्रहणी भविष्य की, ऐसा नाम हमारा कब हमारे मुख से उदित होगा, जिस समय ये सब सारी दशा ये भाव अवस्था की के लक्षण है तटस्थ। और अंतर लक्षण क्या है, अंतर लक्षण उसको कौन कहेगा जो कि अच्छी तरह से उस भाव को जानता है, दूसरा नहीं होगा, और वही कर सकता है, वही समझ सकता है, दूसरे दूसरे को ये समझा ही नहीं सकता।
तो क्या है जो भाव को जानने वाले वही समझे,
स्वरूप लक्षण उसके विभिन्न स्तरों में हो सकता, भावावस्था का स्वरूप लक्षण, जिसको प्रेम होगा उसका प्रेम का, स्नेह का, मान का, प्रणय का, राग अनुराग भाव महाभाव मादन मोहन ये सब के हो सकते, किंतु साधारण रूप में इस जगत में ये भावावस्था के ही लक्षण अधिक, इससे अधिक का लक्षण न कोई समझेगा न जाएगा। हृदय एकदम द्रवित हो जाता है, ममता अतिशयन की तरह ममता अधिक हो जाती है। भाव का लक्षण से क्या बतला है,
अनन्य ममता सप्त सप्त विशेषात्मा प्रेमसुजान सामोहा रुचि भी चित्तमार्शन्य रसोभाव।
जब रुचि, रुचि मैंने कृष्ण संबंधी है रुचि, कैसी रुचि, कृष्ण गोचारण करके आ रहे हैं और सखियां सब आ रही हैं, सखा लोग हैं, माता हैं और सब हैं, गायें हैं, कृष्ण गोचारण से आ फुल्लिंदी वरकंत बिंदु वदनम बरहावतम संप्रियम श्री वर्षम तंदार कौस्तुभम पीतांबरम सुंदरम मंदरम गोपीनां नयनोत्पलालितम गोपसंघावितम गोविंदम कलवयुगादं परम विद्यम। ये दृश्य उनको दिखाई पड़ा और दिखाई पड़ने के साथ ही साथ में वो जो क्या है रुचि भी चित्तमार्शन। अच्छा कृष्ण विभावित जो रुचि है, कृष्ण संबंधी वो हृदय में आकर्षित आकर्षि है वो रुचि,
तो
रुचि में उसमें कुछ आशा भी है, कुछ लोभ है, कुछ सेवा की प्रवृत्ति है, ये सब उसके चित्त को एकदम द्रवित बना रहा। द्रवित होते ही फिर क्या होगा, नयन गलदास सुधारया हो गया और उस समय में गला भी रुद्ध हो जाएगा और कंटक के समान, सेमुल के कंटक के समान में ये सब स्वाभाविक रूप में ऊपर के ये लक्षण हो जाए। किंतु भीतर में क्या, रुचि के द्वारा चित्त को, रुचि जो कृष्ण विभावित रुचि हृदय को एकदम, यही द्रवित होना ही वो उसका स्वरूप भाव जो प्रेम का पहली प्रथम किरण या आभास।
अच्छा, इस जगत में तो केवल भाव सिद्ध तक है, इससे आगे तो नहीं।
प्रेम का भी कुछ थोड़ा सा इस शरीर पर कुछ दिख सकता, अधिक नहीं, थोड़ा सा।
और आगे का जो है वो तो नित्य सिद्ध परिक्रमा के संगम में होगा,
सब वहाँ से प्रेम स्नेह मान सब वहाँ पर प्रकट लीला में, यहाँ पर नहीं।
और फिर से कहा है कि मई भक्ति रिहता नाम अमृतत्व आय संपत्ति दिशा जरा से मत स्नेह हो, जत दिन पर्यंत स्नेह उदय ना है तत दिन पर्यंत कहाँ के पावा जाए ना, भक्ति पर हो तो स्नेह उदय ना हो पर्यंत पावा जाए ना।
पावा जावा दूसरी ओर गोपियों को तो मिले हैं किंतु अभी चले गए हैं वहाँ
प्रवास
में, मिल करके भी चले गए, किंतु जब स्नेह हो जाएगा तो कृष्ण का चित्त सब समय द्रवित हो जाएगा, उनके स्नेह से कृष्ण का चित्त जब द्रवित उठा नहीं सकता। इसलिए ये बड़े सौभाग्य से तुमको यह स्नेह है, इसलिए हम दूर कभी नहीं। और हम लोग अभी साधारण रूप में साधक का है भाव अवस्था पर कभी कभी झलक दर्शन मिल जाती है, वो भी ठीक से मिलना नहीं है, तभी उसको हम लोग भावावस्था में कुछ मिलना कह देते हैं, या हरिनाम जो कर रहे हैं उसको भी भक्त मिलना ही
पड़ता
है। महाप्रभु जी खुद ही इसकी व्याख्या में कर रहे हैं, प्रेम भंग बिना व्यर्थ दरित्र जीवन दास कर वेतन मोरे देह प्रेम। प्रेम के बिना जीवों के लिए और कोई धन नहीं, और सब धन होते हुए भी जिसके हृदय में प्रेम नहीं है उनका जीवन दरिद्र। इसलिए हे प्रभु आप कृपा करके मुझे प्रेम धन दे दो, पहले तो वो साधनों में ही प्रीति हो, इसके बाद में आपके प्रति प्रीति हो, इस तरह से। और भाव का स्वरूप लक्षण अब चल रहे हैं, ये बतलाया तटस्थ लक्षण, और उसका स्वरूप लक्षण को बतला रहे हैं तटस्थ रूप से। तटस्थ रूप से मैंने बाह्य रूप में बतला रहे हैं, ये कैसे होता है, जैसे कि रूप गोस्वामी ने उज्ज्वलिंग मणि इत्यादि में वर्णन किया। सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं बृहद भगवतामृत के अंत में हमने जो देखा, गोप कुमार कह रहे हैं ब्राह्मण को
अपने शिष्य मात्र भी
कह रहे हैं, हमने जो तुमको बतलाया उसमें बहुत सी चीजें हैं जो मैंने देखा उसको बतलाया, और बहुत सी चीजें मैंने नहीं देखा उसको बतलाया, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको लज्जा से मुख से कान भी नहीं सुन सकेगा, ऐसी भी बातें हैं उसको भी तुमको हमने अनुभव करके, यद्यपि वो बतलाने की नहीं तो अभी उसको भी मैंने तुमको बताया, जिस चीजों को नहीं देखा उसको भी बतलाया, माने क्या, उसको समाधि रूप में देख करके उनको बतला रहे, जैसे व्यास जी बतला रहे, जिसे सनातन गोस्वामी जी बतला रहे हैं, ये गुरु ऐसे ही चीज साधकों को बतला रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में देखी हुई बात, अनुभव की हुई बात, कुछ ऐसी भी बातें हैं जो अनुभव नहीं कर सका है उसको भी कृष्ण लीला की बातों को उसका वर्णन कर। तो ये स्वरूप लक्षण को किस लिए कर रहे हैं, स्वरूप लक्षण को उन्होंने अपने हृदय में अनुभव करके और बाह्य अवस्था में आकर के साधकों के कल्याण के लिए इसको थोड़े से रूप में प्रकाशित कर अधिक रूप में नहीं। प्रेमांश को प्रथमा अवस्था भाव दिए सात्विका सतमात्रा स्यु कंपाशु पूर्वकादय। जब कृष्ण विभावित भाव जब हृदय को द्रवित कर देते हैं और ममता भी आने लगती है कृष्ण के प्रति, कृष्ण के प्रति ममता आए बिना चित्त द्रवित नहीं होगा। तो ममता आने लगी और वैसी ममता युक्त रुचि हृदय को जबकि द्रवित कर देती है तो ये द्रवित होना ही उसका स्वरूप लक्ष्य। तो जब ऐसा होता है तब प्रेमस्तु या प्रेम की पहली स्थिति है, प्रेम अभी नहीं, प्रेम की परिपक्व दशा नहीं है, अपक्व दशा है, आएगी और चली जाएगी नहीं। जब स्थिर हो जाएगा तब ये समझो ये प्रेम परिपक्व दशा में है, वो अवस्था आकर के जाएगी। और जब ये आभास होगा तो आभास में
कभी कभी
आएगा, कुछ ही तो आएगा और उसकी स्मृति से ही सब समय रोना होना और ये सब जो चीजें। और प्रेम अवस्था में जैसे चैतन्य महाप्रभु कैसे जीवन में जब प्रेम का प्रभाव दिखला रहे हैं तो किसी से बात बस अंतरंग लोगों से, वो भी भाव अवस्था में हो करके
अंतर्वाह्य दशा अंतर्दशा में
अंतर्भाव अंतर्बाह्य दशा में
अर्धबाह्य दशा
सूक्ष्म रूप में बतला रहे हैं कहाँ का कहाँ किस रूप में उसको वर्णन कर रहे हैं।